छवि की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से अयान ने आरव को कॉल करके सिंघानिया मेंशन बुलाया। आरव आयु के साथ बिजी था, लेकिन फिर भी उसे सुलाने के बाद वो अयान के बुलाने पर सिंघानिया मेंशन चला गया था। आरव सिंघानिया मेंशन के अंदर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने अयान को कॉल करके बाहर ही बुला लिया था। अयान आरव के पास गया और उसकी गाड़ी की विंडो पर झुककर बोला, अंदर चलकर बात करते हैं, कोई नहीं है घर पर, मॉम भी सो चुकी हैं। आरव ने रूखे तरीके से जवाब में कहा, मैं तुम्हारे बुलाने पर यहाँ तक आया हूँ, ये काफ़ी नहीं है क्या? मुझे इस घर के अंदर नहीं जाना है, चुपचाप गाड़ी में बैठो, कहीं और चलते हैं। उसने अंदर आने से साफ मना कर दिया था। अयान जानता था आरव अपनी जिद का पक्का है, लेकिन इस वक्त वो छवि को भी नहीं छोड़ सकता था। अयान ने नज़रें झुकाकर कहा, ठीक है फिर, आप वापस घर चले जाइए, मैं मॉम को अकेले छोड़कर आपके साथ बाहर नहीं आ सकता। ये पहली बार होगा जब अयान ने आरव को किसी बात के लिए मना किया था, वो भी छवि का नाम लेकर। आरव ने कुछ पल अयान के चेहरे की तरफ देखा और फिर गाड़ी से उतर के उसके पास आ गया। आरव ने अयान के हाथ को थामते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं, मेरे लिए मेरी जिद या किसी भी नफरत से ज़रूरी तुम हो। तुम इस वक्त ठीक नहीं रख रहे हो, तो तुम्हारे लिए मैं अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अयान ने आरव की बात पर हामी भरी और फिर दोनों भाई अंदर आ गए। अयान आरव को गार्डन एरिया में लेकर गया, वो दोनों वहाँ एक बेंच पर बैठे थे। आरव ने अयान की तरफ देखा और फिर पूछा, अब बताओ क्या हुआ है और तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम छवि सिंघानिया की फ़िक्र कर रहे हो, मुझे थोड़ी वियर्ड फीलिंग आ रही है। अयान ने आरव की बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर भारी आवाज़ में कहा, हाँ, क्योंकि वो ठीक नहीं है भाई, मुझे नहीं पता उन्हें क्या हुआ है, क्योंकि कल सारे टेस्ट करवाने पर ही पता चलेगा। शायद उनके ब्रेन में कुछ दिक्कत है या बॉडी में भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि उनके कफ में ब्लड निकल रहा था, पिछले कई दिनों से वो अजीब बर्ताव कर रही हैं। मैंने उनसे एक नॉर्मल सा सवाल पूछा कि मेरा बर्थडे कब आता है और ये उन्हें याद नहीं रहा। हाँ, तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है, किसी के भी कफ में ब्लड आ सकता है अगर उसे इन्फेक्शन हो। रही बात बर्थडे भूलने की, तो जो औरत अपने बच्चों को भूल सकती है, उनके लिए उनका बर्थडे भूलना कौन सी बड़ी बात है? आरव ने लापरवाही से जवाब दिया। वैसे भी उसे छवि की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अयान ने आगे कहा, भाई आप सब चीज़ों को जितना नॉर्मली ले रहे हैं उतना है नहीं। वो आपसे मिलना चाहती थी, मैंने पहली बार उनकी आवाज़ में आपके लिए फीलिंग्स देखी थी, आपके लिए परेशान थी वो, उन्होंने आपसे मिलने की रट लगा रखी थी, मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें सुलाया था। पहले भले ही आरव को अयान की बातों से फ़र्क ना पड़ा हो, लेकिन जब उसने बताया कि छवि आरव से मिलना चाहती है, तो आरव की आँखें गुस्से से सर्द होने लगी। आरव अपनी जगह से उठते हुए बोला, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं अयान, तुम्हारी परेशानी में मैं सब कुछ छोड़ पर आ सकता हूँ, लेकिन उस औरत के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आगे से वो मर भी जाए तो मुझे कॉल करके मत बताना। आरव वहां से जाने लगा, तभी अयान जल्दी से उठकर उसके सामने खड़ा हो गया। अयान ने इमोशनल होकर कहा, मेरा यकीन मानिए भाई, वो ठीक नहीं है। क्या आपने उनके अंदर आए बदलाव को नोटिस नहीं किया? जब से आपका एक्सीडेंट हुआ है वो चेंज हो गई हैं। आपके एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले से ही वो मुझे बार बार आपके बारे में पूछकर परेशान हो रही थी। वो आपको वार्न करना चाहती थी ताकि आप मुंबई से बाहर रहें और वो फैज खान आप पर हमला ना कर सके। अयान की बातों ने आरव को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो खोए हुए स्वर में बोला, हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें तो मैंने भी नोटिस की। तुम्हारी सगाई वाले दिन वो सबसे अलग थी, किसी से ठीक से बात नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि मुझसे भी बात नहीं की। वो तो मुझसे बहस करने के मौके ढूंढती हैं, इस बार तो उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। अयान ने आरव की बात पर सहमति जताते हुए कहा, एग्जैक्टली भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मॉम की तबीयत अचानक से इतनी ख़राब हुई होगी। धीरे धीरे उनकी हालत गिरती जा रही है और उन्होंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। मैं चाहता हूँ आप उनसे मिलकर नॉर्मली बात करो, एटलीस्ट जब तक वो ठीक ना हो जाए। उसके बाद आपको उनके साथ जितनी दुश्मनी निभानी है आप निभा सकते हो। अयान जानता था कि वो आरव से बहुत बड़ी चीज़ मांग रहा है, वो उसके लिए कभी तैयार नहीं होगा, इसलिए उसने काफ़ी रिक्वेस्टिंग वे में कहा, प्लीज़ भाई मना मत कीजिएगा, वो जैसी भी है हमारी मॉम है। बोलते हुए अयान ने नम आँखों से आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तुम अच्छे से जानते हो ये मुझसे नहीं होगा, फिर भी जानबूझकर ऐसी चीज़ मांग रहे हो, मेरे लिए कर लीजिए ना भाई, अब तक आपने मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया तो आज भी मत कीजिए। अयान ने जवाब दिया और फिर वो आरव के गले लग गया। छवि ने आरव के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिताया था, लेकिन अयान को उसी ने पाला था। उसकी हरकतों की वजह से आरव और अयान भले ही उसे पसंद ना करते हों, लेकिन आज छवि को इतना बीमार देखकर अयान का दिल पिघल गया। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अयान को सहलाते हुए कहा, ठीक है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, सिर्फ तब तक के लिए, अदरवाइज मैं कुछ भूला नहीं हूँ अयान, और ना ही कभी भूलूंगा कि उन्होंने मेरे और मेरे डैड के साथ क्या किया है। अयान आरव से अलग हुआ और मुस्कुराते हुए उसकी बात पर हामी भरी। फिर अयान ने आरव को थैंक्स कहा और उसे छवि के रूम में ले जाने लगा। छवि अपने कमरे में आराम से सो रही थी। आरव अयान के साथ वहां पहुंचा। उसने एक नज़र छवि की तरफ देखा, जो शक्ल से काफ़ी कमज़ोर और थकी हुई लग रही थी।
ये वाकई बीमार है, आरव ने छवि की तरफ देखकर कहा और फिर उसके पास जाकर बैठ गया। छवि के साथ आरव की कुछ खास अच्छी यादें नहीं थी, वो उसके साथ सिर्फ 4 साल तक रही होगी और आरव की वो यादें भी अब धुंधली हो चुकी थी। छवि को देखने के बाद आरव ने बिना किसी भाव के आयान की तरफ देखा और कंधे उचकाकर कहा, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, मेरे दिल में इनके लिए कोई इमोशंस नहीं है, बस इतना ही कह सकता हूँ कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हाँ एक वादा कर सकता हूँ कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाती मैं इनकी सिंघानिया इंडस्ट्रीज पर कोई अटैक नहीं करूंगा। इतना कहकर आरव वहां से जाने लगा। आरव अयान के पास पहुंचा तब अयान ने धीरे से कहा, प्लीज कल हॉस्पिटल पहुंच जाइएगा, मॉम के कुछ टेस्ट करवाने हैं। आरव ने अयान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर वहां से चला गया। अयान अच्छे से जानता था कि आरव कितना भी छवि से नफरत क्यों ना कर ले, लेकिन कल वो हॉस्पिटल जरूर पहुंचेगा। छवि से मिलने के बाद आरव वापस घर आ चुका था। उसने आयान के सामने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन छवि की हालत देखकर उसका दिमाग भी डिस्टर्ब हो चुका था। आरव आयु के पास लेटा हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने बार बार छवि का चेहरा घूम रहा था जब उसने उसे लेटे हुए देखा था। आरव ने अपने मन में बड़बड़ाकर कहा, आपको तकलीफ में देखकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है, जबकि आपने हमेशा मुझे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम ही समझा है। मेरे दिल में आपके लिए कोई इमोशंस नहीं है, मुझे आपके बारे में सोचना भी नहीं है और ना ही आपको याद करना है, बस आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ ताकि मैं आपको पूरी तरह बर्बाद कर सकूं। आरव छवि की यादों से बाहर निकलना चाहता था। छवि को भूलने के लिए आरव ने अपने पास में देखा तो आयु गहरी नींद में उसके पास में काफी आराम से सोई हुई थी। आरव ने उसे धीरे से खींचकर अपने करीब कर लिया।
आरव को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो आयु को जगाते हुए बोला, मिसेस खुराना चलो उठो, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम किस लिए हो, मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम मजे से सो रही हो, चलो खड़ी हो जाओ, मुझे तुमसे लड़ाई करनी है। तुम मेरे बच्चों को अबॉर्ट करने के बारे में सोच रही थी, अगर तुम ऐसा कर देती तो आई स्वेयर मैं तुम्हें डिवोर्स देता। आरव ने आयु को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गहरी नींद में सोई हुई थी। मजबूरन उसे सोने के लिए कुछ दवाइयां लेनी पड़ी और कुछ ही देर में आरव नींद के आगोश में था। अगली सुबह आयु हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। आरव को भी छवि के लिए हॉस्पिटल जाना था, लेकिन वो गहरी नींद में सोया हुआ था। आरव को जगाने के लिए आयु उसके पास आई। उसने आरव का हाथ अपने हाथ में लिया और उस पर हल्के से किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग आरव, उठ जाओ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और अकेले ही चली जाऊंगी। आयु की बात सुनकर आरव नींद में बड़बड़ाते हुए बोला, हाँ जानता हूँ मिसेस खुराना, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम तो हो गया है, तुम लड़कियों को बच्चे चाहिए होते हैं, वो मिल गए तो फिर तुम्हारा मुझसे क्या लेना देना। बोलते हुए आरव ने आंखें खुली और आयु को घूरते हुए देखने लगा। आयु ने मुस्कुराते हुए आरव की तरफ देखा तो आरव ने आईज रोल करके कहा, आगे से गलती से भी मेरे हाथ पर किस करके मुझे गुड मॉर्निंग विश मत करना, अब क्या इतने बुरे दिन आ गए मेरे जो तुम मुझे हाथ पर किस करके मॉर्निंग विश करोगी। बोलते हुए आरव ने आयु को खींचकर अपने ऊपर ले लिया। आरव ने आयु को कसकर पकड़ा हुआ था, वो उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो आरव, मुझे लेट हो रही है, दादी ने बोला है कि शाम को जल्दी घर आना है, तो जल्दी आने के लिए जल्दी जाना भी पड़ेगा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और अकेले कहीं नहीं जाओगे तुम, आगे से मुझे किसी चीज के लिए मत रोकना, मैंने तुम्हारी बात मानी है तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। आरव ने जवाब दिया, तुमने मेरी सिर्फ एक बात मानी है, अब क्या दिन रात उसे ही गिनाते रहोगी, आयु ने आईज रोज करके कहा। आयु आगे कुछ कहती उससे पहले आरव ने उसे पकड़कर बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। आरव आयु के होठों पर किस कर रहा था, उसके एक्शंस काफी सडन और अनएक्सपेक्टिंग थे। एक लंबे किस के बाद आरव ने किस ब्रेक करके कहा, हाँ जिंदगी भर तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी, आगे से कभी जिद नहीं करोगी और मुझसे बिना पूछे कोई काम करने के बारे में सोचोगी भी नहीं, तुम अकेले हॉस्पिटल नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, वैसे भी वहाँ मुझे कुछ काम है। आयु ने आरव की बात पर हामी भरी। उसके हाँ कहते ही आरव आयु के ऊपर से खड़ा हो गया था। उसके बाद आरव बाथरूम में तैयार होने चला गया, जबकि आयु अभी भी बाहर थी, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। आरव अंदर से जोर से चिल्लाया, आयु सीरियस आयु, तुम ब्लश कर रही हो, तुम प्रेग्नेंट हो और रिएक्ट ऐसे कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें पहली बार किस किया हो। हाँ लेकिन काफी टाइम बात तो किया है ना, आयु ने जवाब दिया। वो बाथरूम के दरवाजे के पास आ गई थी और उसने फिर आगे कहा, मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया आरव, तुम्हारे प्यार को और तुम्हारे एहसास को भी, तुम्हारे हार्मोनल चेंजेस पीक पर है मिसेस खुराना, सो डोंट सेड्यूस मी, जाकर ब्रेकफास्ट करो, हॉस्पिटल के लिए निकलना है। आरव ने काफी रूडली जवाब दिया और फिर अपना रूटीन पूरा करने में लग गया। आरव के इस तरह बात करने पर आयु का मुंह बन गया। कुछ ही देर बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद गाड़ी में थे। आयु नहीं जानती थी कि आरव हॉस्पिटल क्यों जा रहा है। रास्ते में आयु ने आरव से पूछा, तुम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो, तुमने अभी मुझे इसका कारण नहीं बताया, देखो वहां जाकर किसी को ये मत कहना कि वो मेरे ऊपर निगरानी रखें, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, ओके, वैसे तो मैं ये नहीं करने वाला था लेकिन अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, सबसे बात करके आऊंगा और एक एक स्टाफ को कहकर आऊंगा कि गलती से भी मेरी वाइफ को तंग करने का सोचा तो हॉस्पिटल से निकाल दूंगा,
आरव ने गाड़ी ड्राइव करते हुए जवाब दिया। उसने बातों ही बातों में आयु के सवाल को फिर से टाल दिया था। आरव के ऐसा करने पर आयु ने सिर हिलाकर कहा, बहुत स्मार्ट बन रहे हो मिस्टर खुराना, आधा रास्ता आ गया है और 3 बार पूछ चुकी हूँ कि हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो, हर बार टाल दिया, बता रहे हो या अयान को कॉल करके पूछूं। आयु के मुंह से अयान का नाम सुनकर आरव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो कुछ पूछता उसने खुद ही जवाब देते हुए कहा, मुझे ऐसे मत देखो, कल रात को उसी का कॉल आया था ना, उसके बाद तुमने मुझे वो दवाइयाँ दी, मैं डॉक्टर हूँ तो मुझसे छुपा नहीं है कि कौन सी दवाई का क्या असर होता है, मेरे सोने के बाद उससे मिलने गए थे ना, अब मुझे कोई बहाने नहीं सुनने हैं, बताओ मुझे कि हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो। आरव ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ अयान से ही मिलने के लिए गया था और जाना पड़ा, एक्चुअली छवि सिंघानिया की तबीयत खराब है और वो चाहता है कि उसके टेस्ट के टाइम में उसके साथ रहूं, मैं नहीं रहना चाहता पर अयान को लगता है कि वो बहुत ज्यादा बीमार है, शायद मौत को अपने करीब देखकर औरों की तरह छवि सिंघानिया को भी अपने पाप धोने हैं। आरव उस वक्त काफी रूड साउंड कर रहा था। आयु ने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अयान छवि के साथ आरव के आने का ही वेट कर रहे था। वहीं हॉस्पिटल में आरव को अपने लिए खड़ा देखकर छवि के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई।